ओम शांति। दिलों के सहारे बाबा, सबके दिल का सहारा बन गया ना, जिसने हमें क्या बनाया, ज्ञान सितारे, जो ज्ञान की रोशनी से हमेशा जगमगाते रहते हैं। तो ऐसे दिलाराम बाबा हम सबके दिलों की पीड़ा को हर लेता है, दिल में खुशियां भर देता है, अनेका अनेक प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। केवल एक छोटा सा संगम युग है जो प्राप्तियों से संपन्न, स्वयं को संपन्न करने का युग है, अविनाशी प्राप्तियां, जो प्राप्तियां जन्म जन्म साथ चलती हैं। संसार में बाबा के कहते हैं, क्या हर मनुष्य क्या चाहता है जीवन में, नाम मान शान, है ना। तो हमारा नाम कौन जपता है, भगवान जपते हैं। कितनी खुशी की बात है, हम सब ने पहले भक्ति मार्ग में भगवान का नाम जपा, और वो भी परिचय रहित, अपने अपने आइडिया अनुसार भक्ति करते रहे शक्ति अनुसार, लेकिन बाबा तो परिचय सहित हमको याद करते हैं। हमारा परिचय भी बाबा हमको स्वयं ही देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा कितना ऊंचा नाम है, मान है और शान है। तो कितना फख्र होना चाहिए जीवन में, कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे नाम की माला जपता है। कितना बड़ा सौभाग्य हम सबका है कि रोज सवेरे भगवान अपने बच्चों को देखता है, बच्चों को ढूंढता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर उनको दूर करने के लिए बाबा हमें युक्तियां भी बताते हैं, चार पेज का पत्र लिखकर समस्याओं का समाधान भी देते हैं कि कैसे हम हर समस्या से मुक्त रहें, समाधान स्वरूप बन सके। तो ये संगम युग ही है जहाँ हम संपूर्ण संतुष्ट रह सकते हैं, संपूर्ण रूप से प्रसन्न रह सकते हैं। इसलिए गायन है ना, ब्राह्मणों के खजाने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो ये केवल गायन ब्राह्मणों का है, देवताओं का नहीं है। देवताओं के खजाने से कौन सी वस्तु गायब है, एक तो बाबा गायब है, और कौन गायब है। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। संगम युग है, जो संगम युग में भगवान का सुख मिलता है, इतना बड़ा परिवार मिलता है, वो सब उनको नसीब नहीं है। तो सबसे बड़ा नसीब किसका है, हम सब ब्राह्मण आत्माओं का नसीब है। तो हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए ना, संतुष्टता में कमी आ जाती कभी कभी। जो प्रसन्नता, जो खुशी, जो जीवन में हर्षित मुक्ता रहनी चाहिए, तो उसमें कमी आने के भी कुछ कारण हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, सदा संतुष्ट रहने की विधि क्या है, आज ही बताया ना मुरली में, क्या बताया, सर्व प्राप्तियों को, कोई ना कोई प्राप्ति को स्मृति में लाओ, प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखो। तो जो सर्व प्राप्तियों से हम सब बच्चों को संपन्न करने वाला है, भरपूर करने वाला है, उसको पाकर हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। दिल से एक आवाज निकलना चाहिए कि बाबा हम आपको पाकर संतुष्ट हुए। क्या आवाज निकलनी चाहिए, हम आपको पाकर संतुष्ट हुए, तृप्त हो गई, जैसे आत्मा एकदम खुशी से झूम उठी। उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी तो कुछ है ना, वो संतुष्टता भी कैसे रहेगी, उसके भी नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, जिनको हम पालन करेंगे तभी तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं हर बच्चे को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दे देता हूँ, फुल वर्षे के अधिकारी है हर आत्मा। लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। और नंबरवार क्यों बनते हैं वो भी हम सबका अलग अलग कारण हो सकता है। तो हम कुछ एक बातें मुरली की भी देखेंगे और देखेंगे कि संतुष्टता कैसे रहे और असंतुष्टता क्यों आती है जीवन में, उसके लिए हम 21 बातें देखेंगे। उससे पहले मुरली पर थोड़ा नज़र दौड़ाएंगे। असंतुष्टता कब आती है, असंतुष्टता का कारण जब हम एक इच्छाएं हो गया और प्रश्नचित क्वेश्चन प्रश्नों की कतार में लग जाते हैं, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे नाम मान शान, फिर व्यर्थ के विस्तार में चले जाते हैं। और व्यर्थ कैसा होता है, बाबा ने क्या बताया, व्यर्थ कैसा होता है, व्यर्थ बातें कैसी होती है, चटपटी होती है ना, खाली सलाद खाते रहो तो अच्छा लगेगा, उसमें हर चीज चाहिए। तो चटपटी बातें फिर करने में टाइम भी बड़ा अच्छा पास होता है और आत्मा को बड़ा सुख मिलता है उसमें, क्यों, क्योंकि आदत पड़ी हुई है वो, और उस आदत के हम अधीन हो जाते हैं। 63 जन्मों की आदत पड़ी है और फिर एक बार वो आदत लग जाती है तो क्या होता है, फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और वो संस्कार कड़े हो जाते हैं, फिर उनसे छूटना मुश्किल हो जाता है, फिर हमारी महसूसता शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई व्यर्थ की बातों के विस्तार में जाते हैं, और कितना सूक्ष्म पाप है, अगर हम थोड़ा भी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, हाँ उसने तो अपना व्यर्थ खाली कर दिया और हमने अपने आप को व्यर्थ से भर दिया, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, वहाँ रुचि बढ़ जाती है। तो व्यर्थ भी माया की चाल कितनी जबरदस्त है, माया की जालसाजी, अनेक प्रकार के व्यर्थ से माया हमको उलझा के रखती है। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की कला सीखनी है अपने को, क्योंकि व्यर्थ तो आएगा आएगा, लेकिन बाबा ने कहा जो आत्मसंतुष्ट है प्रसन्न है उनके आगे व्यर्थ आने से आने की व्यर्थ की गति जो फास्ट नहीं होगी, कम हो जाएगी वो। तो हमको व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की कला सीखनी है। जैसे पिछले मूल्य में बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि संसार में साइंस का एग्जाम्पल दिया कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्टेज होता है, उसको मशीन क्या करती है, नया बना देती है, नया रूप कर देती है। तो सारी दुनिया क्या हो गई, ये सारी दुनिया तो रावण की कैद में है, व्यर्थ से भरी पड़ी है सारी दुनिया, क्या है, किचड़े के डिब्बे में। बाबा ने कहा तुम किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे, तो सारी दुनिया रौरव नर्क है, चारों तरफ व्यर्थ का अंबार लगा हुआ है, विकारों की अग्नि है, उसमें हर एक आत्मा झुलस रही है। तो ये हम सब चीज़ें दिखाई देंगी हमको, लेकिन हमें उनसे निकलने के लिए स्वयं का दृष्टिकोण एटीट्यूड चेंज करना है, क्योंकि उन सब चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं और उसका हम सबको गहरा अनुभव है। क्या अनुभव है, कि हमने उनसे दुख ही दुख पाया है, सुख नहीं मिला, पतन नहीं हुआ है, हमारी अवनति हुई है, आत्मा ने बहुत कष्ट झेला है, बहुत यातनाएं झेली हैं, बड़े दुख दर्द से बड़ी पीड़ा से आत्मा ग्रसित हो गई। तो ये हमारे पास अनुभव हैं, लेकिन जब बाबा का हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान जैसे एक शीतल छाया का काम करता है, तो उससे छूटने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है अगर हमको ज्ञान बुद्धि में रहता है तो। इसलिए सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जैसे ज्ञान की स्मृति ओझल होती है, धुंधली हो जाती है, तो व्यर्थ का प्रकोप, व्यर्थ का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। जो भी थोड़ा बहुत योग बल हमने जमा किया होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है, बुद्धि ब्लॉकेज हो जाती है। जो बाबा से हमको मदद अनुभव करनी चाहिए थी, वो मदद तो उसकी आती है लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। कौन माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को मदद नहीं करे, होगा कोई ऐसा संसार में, तो वो तो पारलौकिक पिता है, तो क्या वो हम बच्चों को मदद नहीं करता होगा, करता है ना। लेकिन उस मदद को अनुभव करने के लिए बुद्धि को उतना प्लेन रखना पड़ेगा, व्यर्थ से मुक्त रखना पड़ेगा, उतना प्योर करना पड़ेगा जिस बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान के रत्न ठहर सकें, वो बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए। तो उसकी मदद को कैच करने के लिए बुद्धि उतनी प्योर करनी है, उतना खाली रखनी है, व्यर्थ की बातों से मुक्त रहना है। व्यर्थ एक जहर की तरह है, और जहर एक बार शरीर में चला गया तो मौत निश्चित हो जाती है। और ये धीमा धीमा जहर है, और बड़ा मीठा मीठा जहर है, डायबिटीज की तरह, साइलेंट किलर जिसको कहते हैं, है ना। तो व्यर्थ जो है धीरे धीरे हमारी सारी की कमाई को चट कर देता है। तो व्यर्थ से बड़ा सावधान रहना है। और व्यर्थ सबका अपना अपना अलग अलग हो सकता है, चाहे वो देखने में, चाहे सोचने की, व्यर्थ सोचने की आदत पड़ी है या अनावश्यक सोचने की आदत पड़ी है। तो जो छोटी छोटी आदतें हैं, इन सब ने मन को बश करके रखा हुआ है, एक जाल में आत्मा जैसे उसमें ग्रसित हो गई है, जकड़ चुकी है। तो उससे छूटने का हमको खुद ही मार्ग प्रशस्त करना है, खुद ही निकालना है, स्वयं की एक लिस्ट बनानी है कि मैं कौन कौन से व्यर्थ में अभी भी फंसा हुआ हूँ। व्यर्थ बातें, व्यर्थ सुनना, देखना, बोलना, सोचना, व्यर्थ की बहुत बड़ा विस्तार है, व्यर्थ की दुनिया है, है ना। और वो आकर्षण वाली है, जो सत्य है वो आकर्षण वाला इतना नहीं है, असत्य बड़ा आकर्षण वाला होता है, और वहाँ ना चाहते भी मन बुद्धि वहाँ चला जाता है। तो इसलिए हमें स्वयं को देखना है कि कहीं ना कहीं हम व्यर्थ की बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। स्वयं का ऑपरेशन स्वयं को खुद ही करना पड़ेगा। दूसरे डॉक्टर तो शरीर की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन मन की बीमारी का इलाज करने के लिए केवल एक ही सर्जन है, कौन? सुप्रीम सर्जन शिव बाबा, और दूसरा सर्जन हम स्वयं। तो देखना है व्यर्थ का कितना विस्तार हमने करके रखा हुआ है। अभी समेटने का टाइम है, क्योंकि समय तो इशारे देता रहता है। संसार की ओर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो कैसी कैसी हलचल है, प्रकृति अपना पूरा विकराल रूप दिखा रही है, कैसी कैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कभी कोई मन में चित्त में नहीं होता है, बरसात आती है, फ्लड आता है और सारे का सारा चला जाता है, घरों के घर तबाह हो गए, पूरा कई तो बार तो गांव का गांव ही नष्ट हो जाता है, गाड़ियों की गाड़ियाँ चली गई, बसें की बसें चली गई, कहीं रोड पर भैंसें जा रही, भैंसें भी चली गई, वहीं दुकानें की दुकानें चली गई। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमको थोड़ा अपने प्रति और जागरूक होना पड़ेगा, और हमको सतर्क होना पड़ेगा, एक तो स्वयं के प्रति कि मैं स्वयं के प्रति कितना संवेदनशील हूँ, कितना सतर्क हूँ, कि जो मेरे कर्तव्य हैं, जो भगवान ने हमारे पर आश रखी है, जो आत्माएं संसार में ऐसी परिस्थितियों से गुजर रही हैं, उनको शांति की अनुभूति कौन कराएगा? जिसका घर तबाह हो जाए उसके मन पर क्या बीतेगी बताओ? देखते देखते सारा ही घर सामने जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, वहाँ क्या चाहिए उन आत्माओं को? बल, शक्ति, सहन शक्ति, शांति चाहिए, ताकत चाहिए, कौन देगा उनको? हम सब आत्माओं के ये बड़े बड़े कर्तव्य हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर भी सकाश देनी है, नहीं तो हम अपने आप को सकाश देने में लगे रहते हैं। अपने विकर्मों को ख़त्म करने का टाइम भी अभी चला गया, जितने करने थे कर लिए, अभी जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं दूसरों को सकाश देने से अपने भी खत्म हो जाएंगे। स्वयं के प्रति जो पुरुषार्थ करना था कर लिया, बहुत हो गया अभी। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की सेवा में बिजी रहो तो स्वयं की सेवा अपने आप हो जाएगी। हम हद में बने रहते हैं, हद की प्राप्तियों के पीछे। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी भी प्राप्तियां हैं लेकिन बेहद की प्राप्तियां हैं। तो हमको बेहद का दृष्टिकोण, बेहद की मानसिकता बनाकर रखनी है, बेहद की सेवाओं में स्वयं को व्यस्त करके रखना है। अगर हम हद की सेवाओं में रहते हैं तो हमारी जो बुद्धि ना बड़ी संकुचित रहती है, उसका दायरा बड़ा छोटा रहता है, हमारी व्यापक सोच नहीं रहेगी। विश्व कल्याण के प्रति जो भावनाएं उठनी चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, वो तभी उठेगी जब सबके प्रति या उससे पहले स्वयं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो। अगर हम स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना नहीं है, उसकी निशानी ये है कि व्यर्थ के विस्तार में हम जल्दी फंस जाएंगे। व्यर्थ सामने दिख रहा है और हम उससे छूटने का प्रयास करते हैं, अर्थात शुभ भावना कामना का स्टॉक हमारे अंदर है, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की मुरली थी क्या, कौन सी मुरली थी आज थी, ब्राह्मण जीवन क्या है, ब्राह्मण जीवन में प्राप्तियों का द्वार, हाँ, तो सर्व प्राप्तियां संतुष्टता और प्रसन्नता। तो सभी संतुष्ट हैं, हाथ खड़ा कर, कौन कौन संतुष्ट है, सभी संतुष्ट हैं, कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। सामने से कोई 50 बातें बोल दे तो चेहरे की रेखा नहीं बदलती, अभी तो सभी संतुष्ट। बाबा कहते ना पिछले संडे की मुरली, बच्चे बाप से भी चतुर है। पिछले संडे की मुरली में था ना, तो बाबा को भी खुशी होती है कि मेरे बच्चे चतुर तो है कम से कम। तो संतुष्ट तो है ही, संतुष्टता तो हमारा संस्कार है, मूल संस्कार है ना। तो भगवान के बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे तो कौन संतुष्ट होगा। तो रोज मुख से, मन से संकल्प या मन से एक आवाज निकलनी चाहिए कि बाबा हम आपको पाकर संतुष्ट हुए। रोज रिपीट करना ये, बाबा हम आपको पाकर संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, भरपूर हो गए। क्योंकि जो चीज़ हम रिपीट करते हैं ना बार बार, वो हमारे संस्कारों में चली जाती है, फिर धीरे धीरे वो हमारे कर्मों में अपने आप आने लगती है, मन उसको स्वीकार कर लेता है। अगर हम कंप्लेंट करते हैं कि बाबा मन तो मेरा बोझिल है, भारी रहता है, संतुष्ट तो हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ भी हमारे संस्कारों में चल जाती है। इसलिए जो हम अपने मन को संकल्पों का भोजन देते हैं तो लगेगा तो वही, जो हम चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में तो वही, उसी हिसाब से हमारी हेल्थ बनती है। तो मन को हम कौन से संकल्पों का भोजन देते हैं, तो ऐसे ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न संकल्पों की रचना रचनी है। तो रोज सवेरे उठते क्या कहेंगे, बाबा हम आपको पाकर संतुष्ट हो गए। कितना संतुष्ट हो गए, संपूर्ण संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, मन मेरा भर गया। ठीक है, तो रोज गीत गाएंगे ना, है ना, क्या गीत गाएंगे, पाना था सो पा लिया, खाना था सो खा लिया, काम क्या बाकी रहा। ज्ञान भी तो भोजन है ना, ये तो रोज खाना है, इसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है। सत्ययुग से लेकर कलयुग या संगम युग के अंत तक खाली ये पेट का ही सवाल है। अगर मान लो अगर ये पेट ही ना होता तो झंझट ही नहीं होता कोई भी। सवेरे से लेकर रात तक किस लिए काम करते हैं हम, पेट के लिए। इसलिए संसार में क्या कहावत है, पापी पेट का सवाल है, दो रोटी। तो एक तो ये पेट है, क्या मन बुद्धि का पेट, तो जितना वो भरा रहेगा तो हम संतुष्ट रहेंगे। इसलिए बाबा ने बताया ना, चेक करो अपनी प्राप्तियों को, स्मृति में रखो कि ज्ञान में कहाँ तक संतुष्ट हैं, अर्थात कौन कौन सा ज्ञान हमारी बुद्धि में है, उसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो वो हमारे संस्कार बन जाएंगे, फिर वो अपने आप काम करेंगे। योग की अनुभूतियाँ जो बाबा अनेका अनेक अनुभूतियाँ बताते हैं, उन अनुभूतियों में हमने कहाँ तक मास्टरी अनुभव की है, अर्थात योग में एकाग्रता हमारी कितना समय बनी रहती है, या योग में हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव कहाँ तक करते रहते हैं। अच्छा, धारणाओं में हमारी कितनी मजबूती है, धारणाओं में हम कितना पारंगत हैं या कहाँ कमजोर हैं, उसका चिंतन करो। सेवाओं में हमें कितनी खुशी मिलती है, सेवा तो बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, क्योंकि सेवा से क्या होता है, सेवा से बहुत कुछ होता है। सेवा करते रहेंगे तो सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे या निमित्त भाव से करते हैं तो योग अपने आप लगता है, क्योंकि जिसकी सेवा हम करते हैं वो याद तो रहता है ना, कम से कम थोड़ी बहुत तो याद रहती है ना कि भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उससे हमको दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलने से क्या होता है, खुशी मिलती है, और खुशी मिलने से क्या होता है, शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलने से योग अच्छा लगेगा, परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम शक्तिशाली हो जाएंगे, छोटी मोटी बातों में घबराएंगे नहीं। तो एक ही बाबा कहते हैं, एक गुण के पीछे सारे गुण हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया ना, एक विकार है तो उसके पीछे सारी लंबी लाइन लगी है। जैसे संसार में भी जो चोरी करने वाले होते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। अगर किसी को उन्होंने किसी की चोरी करनी हो तो क्या करते हैं, एक दूसरी जगह खड़ा होगा, एक तीसरी जगह खड़ा होगा, एक थैला छीनने के लिए तैयार होगा, चौथा मोटरसाइकिल के बाहर वहाँ खड़ा होगा। अब वो लेके भागेगा किसके पीछे, कौन जो लेके चला गया किस तरफ भागेगा कोई। तो विकार भी ऐसे ही हैं, एक के पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह देखो, ये नेगेटिव है विकार, लेकिन बाबा ने नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का एग्जाम्पल दिया। ऐसे गुणों का चिंतन करो, एक ही गुण को पकड़ लो और उस गुण का चिंतन करते रहो, तो धीरे धीरे सारे गुण हमारे अपने बन जाएंगे, परछाई की तरह पीछे आएंगे। जैसे अंतर्मुखता का गुण है, अगर हम उसको ग्रहण कर ले सारे दिन में तो हमारी कितनी शक्तियां बच जाएंगी। अंतर्मुखता से कौन कौन सा गुण आएगा, वो अगर हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो हमारी एक तो मनन शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, हमारी साधना में उन्नति होगी, दिव्यता जाएगी, रूहानियत अलौकिकता आ जाएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, समर्थ संकल्प आएंगे और मन बुद्धि धीरे धीरे क्या करेंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे और मनन करने का हमको एक नया नया आइडिया मिलता रहेगा। तो एक गुण को भी हम पकड़ लें तो सारे गुण आ जाएंगे धीरे धीरे धीरे। जो भी बाबा 36 गुणों की लिस्ट है ना अपनी, है ना, कौन कौन से 36 गुण है, आगे, हाँ ऐसे याद करने, उसको हिंदी में भी अल्फाबेटिकल कर सकते हैं ना, जैसे अथक, अंतर्मुखता, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, नेक, अक से और है, आत्मविश्वास, आज्ञाकारी, अंतर्मुखता, अथक, एक और से अनुशासन, पांच हो गए ना, ऐसे ईमानदारी, उदारता, रहमदिल, गंभीरता, रमणीकता, दृढ़ता, दूरदर्शिता, पवित्रता, परोपकारिता, नम्रता, निर्भयता, ऐसे निश्चिंतता, ऐसे 36 गुण हैं। तो सारे याद, अगर अल्फाबेटिकल कर लो तो सारे याद हो जाएंगे, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो बुद्धि तो वैसे साफ हो जाएगी। व्यर्थ तो अपने आप ही, माया बाबा ने कहा ना, माया आएगी, हलचल करने आती है, लेकिन अगर वो अपसेट नहीं कर पाएगी। पिछले संडे की मुरली में था ना, माया अपसेट करने आए लेकिन वो खुद ही अपसेट होकर चली जाए, क्यों, क्योंकि हम बिजी हैं। आज भी कहा माया आएगी, वो नमस्कार करेगी, हलचल में नहीं आएंगे हम, तो माया पर विजय पा सकते हैं। तो मन बुद्धि को ज्ञान में बिजी रखना, कोई भी एक गुण ले लीजिए, शक्ति ले लीजिए, उस पर चिंतन करना। जैसे आज ही संतुष्टता का था, तो हम संतुष्टता के बारे में सोच रहे थे, तो शाम को लास्ट के जो 15 मिनट थे उसी में हमने 21 बातें सोची, क्योंकि उस समय का जो शाम का ज्ञान योग का या सवेरे अमृत वेले का बहुत पावरफुल एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ हमको ये चिंतन करना है, नहीं तो मन बुद्धि भाग जाता है। अगर हम पहले से उसको प्लान नहीं दिया, बिना प्लानिंग के बैठ गए तो प्लेन होके निकलेंगे बाहर, इसलिए प्लानिंग के साथ बैठना है, ताकि मन बुद्धि में कुछ हमारे हाथ में हासिल कर सके, हम कुछ महसूसता हो कि हाँ कुछ तो जमा हुआ है, कुछ तो वैराग्य आया है कि संसार से हमको जो भी हमारे अंदर सूक्ष्म विकृतियां हैं उनसे हमको छूटने का दृढ़ संकल्प आ गया अंदर, कि आज से, क्योंकि जो एक परमात्म प्यार का रस चख लिया हमने, एक मनन शक्ति का जो स्वाद पड़ गया, वो फिर धीरे धीरे व्यर्थ से हमको मुक्त कर देगा। तो संतुष्टता, प्रसन्नता, तो संतुष्टता क्यों नहीं रहती है, जब हम क्यों, क्या, के क्वेश्चन में चले जाते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, क्या लगाओ, फुल स्टॉप। तो क्वेश्चन मार्क और तीन मात्राएं बताइए, क्वेश्चन मार्क और आश्चर्यजनक और तीसरा फुल स्टॉप लगाओ, नहीं तो कई बार कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगाएंगे तो सेंटेंस आगे चला जाता है, तो फुल स्टॉप लगा दो, व्यर्थ से मुक्त रहो। व्यर्थ क्या है, चटपटी बातें हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा, तीन बातें, मान, नाम, मान, शान। तो संसार में हमारे नाम से बाबा ने कहा कि आज तक भी संसार में क्या कर रहे हैं वो लोग, ब्राह्मण लोग, आजीविका है ना, पेट का सवाल ही है उनका भी, तो हमारे नाम से बाबा कहते वो भी कितनी कमाई कर रहे हैं, तो हमारा कितना ऊंचा नाम है कि स्वयं भगवान हमको जप रहा है, अजपा जाप, बाबा के लिए बच्चे हैं और बच्चों के लिए बाप हैं, इसलिए बाबा कहते हैं दिल में कौन है, राम, दिलाराम, है ना। भक्ति मार्ग में क्या यादगार है, हनुमान, हनुमान के दिल में कौन था, राम, हमारे दिल में कौन है, तो हम कौन हुए, हनुमान। तो सबके दिल में रग रग में समाया हुआ है ना। हाँ, तो हम नाम मान, तो मान की इच्छा, फिर नाम की और भी बात बोली कि मेरा नाम ने लिया, है ना, एक ये नाम की बहुत बड़ी माया है और जितना गुप्त रहे तो उतना अच्छा है ना। कई बार हम भी देखते जो क्लास कराते हैं ना, कोई महिमा करता है तो खाली खाली अनुभव होता है फिर वो। ये नाम मान शान की बीमारी बड़ी कड़ी बीमारी है और बड़ी सूक्ष्म है ये, इससे छूटने सहज काम नहीं है। तो कोई मेरा नाम ले दे, इतनी हम सेवाएं करते हैं, बाबा ने कहा भले नहीं लेकिन भगवान की डिक्शनरी में नाम है, विजयमाला में आपका नाम है, निश्चित है ना। तो नाम हमारा स्वयं भगवान लेता है, इससे बड़ी कौन कौन सी बात है। और मान, मान हमको स्वयं भगवान दे रहा है, क्या मान दे रहा है, मूर्तियां पूजी जा रही हैं, जो भी मूर्ति पूजन करते हैं प्रतिष्ठा करते हैं कितना मान सम्मान देते हैं, उनको नीचे नहीं रखते हैं, उनको उनको कितना साफ सुथरा करके विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण करके कितने पंडितों को बुलाते हैं, कितने यज्ञ रचते हैं, कितने लोगों को भोजन खिलाते हैं, तो उनका मान कितना हो गया। और शान बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें दिल तख्त पर बिठाया है, तो हमारे जैसा नाम मान शान संसार में किसी का है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर जीवन में संतुष्टता असंतुष्टता का जो चलता रहता है अप डाउन, तो अगर हम 21 बातें याद रखेंगे, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं सबकी अपनी अपनी, तो सबसे पहले तो है कि हमें प्राप्तियों को हमेशा याद रखना है, अपनी अपनी एक लिस्ट बनानी है। जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे तब तक हमारे में जीवन में संतुष्टता स्थायी नहीं रहेगी, कभी संतुष्ट रहेंगे कभी असंतुष्ट। तो प्राप्तियों के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है कि प्राप्ति दाता ही अपना हो गया है, वो हमारे बिना नहीं रह सकता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चों के बिना बाप को भी सूना सूना लगता है। बाबा ने पिछले संडे की मूल्य बताया था ना कि घर में आ जाओ, वहां तो कोई पर्दा नहीं है, यहां तो संसार में बातों के पर्दे हैं, कोई बैठने देगा कोई नहीं बैठने देगा, कोई उठा देगा आपको, वहां तो जब मर्जी आ जाओ, टाइम की भी लिमिट नहीं है। तो बाप के साथ मिलन ना हो, तो स्वयं प्राप्ति दाता ही हमारा अपना हो गया। फिर क्या क्या प्राप्ति मिली है उसकी एक लिस्ट हो सकती है, इतना बड़ा था ज्ञान मिला, ज्ञान का खजाना मिला है, गुणों का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, दुआओं का खजाना मिला, पवित्रता का, खुशी का, कितने सारे खजाने हैं। तो अपने पास लिस्ट होनी चाहिए सारी, फिर बार बार उसको घुमाते रहना बुद्धि में। तो पहली बात, प्राप्तियों को हमेशा स्मृति में रखना है, तो भी हम संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेगी। दूसरी बात, अपने आप को बिजी रखने की कला सीखनी है। खाली मन शैतान का घर, जब हम खाली हो जाते हैं तो हमारी उंगलियां कहां थिरकती हैं, मोबाइल पर, अनुभव है ना गहरा, थोड़ा सा कहां से कहां चले जाएंगे। तो अपने आप को बिजी रखना है, कौन सी बातों में बिजी रखना है, जी ज्ञान योग, मुरली का मनन करना है, सेवा में बिजी करना है। अच्छा, घर में ही, अगर घर में है तो घर की सफाई करो अच्छी तरह से। जैसे मधुबन में आते हैं तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस चीज के दे के जाते हैं, वो स्वच्छता की। तो हमारे घर में भी स्वच्छता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आए तो एक तो सीख के जाए कि स्वच्छता हो, तो ऐसी स्वच्छता हो। मंदिर में स्वच्छता कैसी होती है, तो हम भी तो मंदिर की मूर्तियां हैं ना, तो जहां हम रहते हैं तो वो घर भी तो एक मंदिर की तरह है ना, तो वहां स्वच्छता कैसी होनी चाहिए, मंदिर से भी अच्छी होनी चाहिए ना, क्योंकि ईष्ट देव जहां रह रहे हैं और संसार के भक्त लोग वहां आते हैं और वहां ही कूड़ा किचड़ा पड़ा हो, कोई चीज कहां पड़ी है, कोई चीज कहां पड़ी है, वो कंघी यहां पड़ी हुई है, वो सरसों का तेल वहां पड़ा हुआ है, वो कपड़े बिखर रहे हैं ऐसे ही, तो कैसे लगेगा। तो इसमें ना सबको एक दो का सहयोगी बनना चाहिए। कई भी बार घरों में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े जो होते हैं हमने देखा है, यही इन्हीं चीज़ों से होती है ना, कि मेरा बैग नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया है। तो एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए अपनी चीज़ों की। अगर हम फिक्स नहीं करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी जाती है, फिर हमको सोचना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो जो छोटी छोटी बातें ना हमारी एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं। तो हमें हर चीज़ व्यवस्थित रूप से रखनी है ताकि किसी का संकल्प नहीं चले, किसी को पूछना ना पड़े। अगर हमने अपनी चीज़ को ढूंढने के लिए किसी और को भी लगा दिया तो उसका भी टाइम चला गया, उसके अंदर से संकल्प चल रहे हैं तो वो संकल्प भी हमारे लिए बोझ बन जाएंगे। भले सामने वाले ज्ञान में नहीं है लेकिन वो संकल्प भी हमारे योग को कमज़ोर कर देंगे, तो दुआएं नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हमको ब्राह्मणों से दुआएं लेनी है, सबसे दुआएं तो हमको परिवार वालों से लेनी है। तो हम घर में कौन है? इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, तो इष्ट देव इष्ट देवियों का निवास स्थान कैसा होना चाहिए? वैसा होना चाहिए ना, कितना स्वच्छ प्योर वाइब्रेशन आनी चाहिए वहां। एक मंदिर होता है, मंदिर में एक ही मूर्ति है, हजारों भक्त आते हैं। अब भक्त तो बेचारे अपवित्र ही हैं लेकिन वो भक्त सारे वहां अनुभूति करके जाते हैं, एक ही मूर्ति है। अब जिस घर में हम रहते हैं वहां तो 5-7 लोग रहते हैं तो उनको तो कितनी अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन कई बार उल्टी अनुभूति हो जाती है। तो हम क्या स्मृति में नहीं रहते हैं, बिजी नहीं रहते, दूसरी बातों में बिजी कर देंगे, प्राप्तियों में बिजी नहीं रहेंगे रहते हैं, इसलिए असंतुष्टता का भाव उत्पन्न होता है, असंतुष्टता का कारण बन जाता है। फिर कंप्लेंट करते हैं कि बाबा जो हमको आपसे मिलना चाहिए था वो तो हमको मिला ही नहीं है। मिला तो है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेने में नंबरवार हो गए हैं। दिया तो उसने एक समान है सबको। तो दूसरी बात क्या है? अपने आप को बिजी रखना है। तीसरी बात है कंपैरिजन नहीं करना किसी से। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, या अपनी बुद्धि का कंपैरिजन या जो हमारी स्थूल प्राप्ति है उनका कंपैरिजन करते हैं तो धीरे धीरे असंतुष्टता आती है, इसलिए कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे फिर मन में व्यर्थ का तूफान चलेगा, फिर उनके जैसा बनने के लिए भागदौड़ करेंगे, षड्यंत्र करेंगे। तो कंपैरिजन नहीं करना है। अगर कंपैरिजन करना है तो क्या करना है? अपने संपूर्ण रूप से कंपैरिजन करना है। जो मेरा अपना संपूर्ण रूप है, कौन सा? सर्वगुण संपन्न या फरिश्ता का रूप है या देवता का रूप है, उससे हमको कंपैरिजन करना है कि मैं उसको अचीव कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। तो कंपैरिजन स्वयं से करना, दूसरों से नहीं करना है, नहीं तो असंतुष्ट रहेंगे फिर। और चौथी बात है ड्रामा की ढाल पर चलना। ड्रामा जो है ना, सारे दिन में एक बार ड्रामा के सारे पॉइंट बुद्धि में रिवाइज करने चाहिए। ये ड्रामा कैसा है? नहीं, उससे पहले, सबसे पहले ये ड्रामा स्वयं भगवान को पसंद है। तो जब भगवान को पसंद है तो मुझे क्यों पसंद नहीं है? ये सबसे बेस्ट है ड्रामा, ये एक्यूरेट है ये। और इस ड्रामा में मैं हीरो पार्टदारी हूं। वो वाले हैं संकल्प, एक कल्याणकारी है, इसमें सबका पार्ट अपना अपना वो तो है ही है, लेकिन एक नए संकल्प जिनमें ऊर्जा भरी हो, शक्ति भरी हो कि मैं इस ड्रामा में हीरो पार्टदारी हूं, मैं इस ड्रामा में संसार की आत्माओं के दुखों को हरने के लिए अवतरित हुआ हूं, विशेष रोल है, विशेष किरदार है मेरा इसमें। तो ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है हमको निश्चित करना, उसमें वो भी देखना है हम पूर्वज आत्मा हैं, कितने सारे सोमान की लिस्ट आ जाएगी। इस ड्रामा में मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं, ड्रामा मेरे से क्या चाहता है। तो चौथी बात होगी ड्रामा। पांचवी बात, मन बुद्धि को प्लेन रखना है, व्यर्थ की बातों से खाली रखना है और समर्थ बातों से भरपूर रखना है। समर्थ संकल्पों की रचना रचने की युक्ति सीखनी है मुरली से, जिसमें एक ऊर्जा भरी हो, शक्ति भरी हो, ताकत भरी हो, उसमें ऐसे संकल्प रचने हैं जिसमें लाइट हाउस माइट हाउस जैसे ज्वालामुखी संकल्प हों, उन संकल्पों से बुद्धि को भरपूर करना है। दूसरी बात, व्यर्थ की बातों से खाली रखना है। जैसे व्यर्थ का आता है तो वहां से किनारा कर लो। अगर थोड़ा सा भी हम टेका दे देंगे, बाबा ने बताया ना टेका देते हैं थोड़ा, अर्थात समर्थन देते हैं दूसरे की, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो भी हमारा क्या हो जाता है? खाता बन जाता है वो। तो कितना सूक्ष्म कर्मों की फिलॉसफी है और पता भी हम सबको है, लेकिन उसके बावजूद हम कर लेते हैं, कितने बहादुर हैं हम लोग, है ना। तो बुद्धि को खा दे। चौथ पांचवी बात, कितने विचार है? पांच होगी। छठी बात, फुल स्टॉप। बाबा ने कहा हर बात को फुल स्टॉप लगा दो, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको कर नहीं कर सकते हैं, और घर में नुकसान हो भी गया, बच्चों ने नुकसान कर भी दिया, तो प्यार से समझा दो। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती से समझाएंगे तो फिर अगली बार फिर करने के चांस रहेंगे उसके, क्योंकि डर से उसके वाइब्रेशन जो है ना वो डर के रहेंगे हमेशा। इसलिए प्यार से समझाना है, उनको गुड वाइब्रेशन देने हैं। इसलिए आजकल तो बच्चों को अपना फ्रेंड बनाना है, क्योंकि पहले का टाइम चला गया। अभी पहले तो क्या होता था, अगर स्कूल में थोड़ी मार पड़ जाती थी और घर में माता पिता को पता चलता था इनको मार पड़ी है, घर में और मार पड़ेगी, थप्पड़ थेरेपी उसको ऐसे कहते थे, है ना, ऐसे टीचर ऐसे कान दबाते थे, वो अपने आप ही याद आ जाता था उधर। और आजकल तो हाथ नहीं लगा सकते बच्चों को, तो बच्चों को प्यार से समझाना है। इसलिए फुल स्टॉप, उसमें साक्षी होके देखना है उस ड्रामा को, क्योंकि जबरदस्ती नहीं किसी को बदल सकते। पहले हम अपनी लाइफ को देख लें कि हम अपने आप को कितना बदल रहे हैं, दूसरों को कहां तक बदल देंगे। तो दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी, स्वयं को। ये ज्ञान ही क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक हम स्वयं को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, दूसरों को परिवर्तन करने का संकल्प आएगा ही नहीं। भले ऊपर ऊपर से उनको दिखेगा कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, महिमा करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद में परिवर्तन करने का संकल्प नहीं आएगा। इसलिए घर में होता भी यही है कि हमारे में अगर कोई कमी कमजोरी रहती है और ज्ञान तो हम अच्छा सुना रहे हैं तो कौन उसको मानेगा। तो छठी बात होगी फुल स्टॉप। आगे है, संतुष्ट हम कब रहेंगे, जब हम अपना छोटे छोटे गोल तैयार करने सारे दिन में, उनको अचीव करना, तो एक खुशी रहेगी, संतुष्टता रहेगी। छोटे छोटे गोल कौन से करने हैं कि अभी से लेकर दोपहर तक मोबाइल नहीं चलाएंगे, या आज घर में दो तेरे पोत्र से बात नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो पहले ही बताया था ना, इसे दादी बात करती है, पिंटू पप्पू क्या खाया, भोजन किया कि नहीं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो होता ही है ना, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देना उनको, लेकिन रूहानी प्यार बनना उनमें। हाँ, ये छोटे छोटे गोल हैं, तो उसकी जगह हमको टाइम कितना बच जाएगा हमारा, तो उसमें से एक पैरा पढ़ना है, या मीठे बच्चे सारा याद होने चाहिए, अक्षर अक्षर है पूरा का पूरा, या वरदान पूरा का पूरा, है ना। जैसे आज का वरदान किया था, हाँ ऐसे याद करेंगे ना आ जाएगा। हर सेकंड स्वयं को भरपूर करने कर सेफ रहने, सदा सेफ रहने वाले डैश डैश बब। हाँ देखो याद आ गया ना। हाँ तो ये छोटे छोटे गोल हैं, ये हमको अगर अचीव करेंगे ना तो एक अलग सी खुशी रहेगी, और उसी खुशी का कोई तोड़ नहीं है। हर सेकंड स्वयं को भरपूर कर सदा सेफ रहने वाले समृद्धि स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बब, है ना। और स्लोगन क्या था, और स्लोगन विश्व का नव निर्माण करना है तो क्या बनो, निर्माण चित्र। कल का स्लोगन प्रकृति को अपना, हाँ देखो सबको याद आ गया ना। आज परसों का स्लोगन चित्र चरित्र, वो स्लोगन था प्रधान था, वो स्लोगन था प्रधान था। हाँ हाँ, डैश के डैश और डैश को याद करो तो डैश बन जाएंगे, बाप के चित्र और चरित्र को याद करो तो चरित्रवान बन जाएंगे। हाँ तो ऐसे मन बुद्धि में भर के रखेंगे ना, देखो कितनी खुशी होगी, और ये खुशी सारी अंदर ही है, दबा के रखी है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो खुशी की वो सारी सारे गुण विशेषताएं कलाएं सारी हमारे अंदर ही हैं, लेकिन फाइलें ना नीचे चल गई हैं। अभी सारी फाइलें कैसे बाहर आ गई, है ना, सबके अंदर ही खुशी तो दबा के रखी है। तो बाबा कहते हैं इसलिए खजानों को यूज़ करो, यूज़ करने से क्या होगा, बढ़ेंगे और खुशी रहेगी, नशा रहेगा, नशा और खुशी, है ना। नशा कम होता तो क्या होता है, खुशी कम होती है। इसलिए संसार में जो जिनको नशे की लत होती है तो बार बार पीते रहते हैं, खाते रहते हैं वो, तो हमको भी बार बार पीते रहना है, क्या ज्ञान अमृत पीते रहना है, है ना। तो नशा रखना है एकदम, कभी भी नशा, कैसा नशा होना चाहिए, हमेशा लड़खड़ाते रहना चाहिए मन, लड़खड़ाते रहना चाहिए, अर्थात मस्त रहना चाहिए मन एकदम, रूहानी मस्ती में मस्त झूमते रहना चाहिए ना, तो कहाँ पहुंच गए थे, फुल स्टॉप के आगे गोल। तो छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं तो एक खुशी रहेगी, और छोटे छोटे चाहे वो योग के, चाहे वो ज्ञान के, चाहे वो सेवा के, चाहे हम यहाँ सेवा करते हैं कोई भी है, या अपने बोल के ही कि आज मेरे मुख से कोई भी ऐसा वैसा बोल नहीं निकलना चाहिए, मिठास होनी चाहिए मेरे बोल में, कम से कम आज के दिन में सबके साथ मीठा तो बोलूं। एक दिन ही करके देखेंगे ना तो अपने आप ही अपने आप को बदलने का, परिवर्तन करने का संकल्प आएगा। नहीं तो हम अपने आप को लूज छोड़ देते छोटी छोटी बातों में, तो लूज नहीं करना अपने आप को, लाइट नहीं करना। पुरुषार्थ में बाबा कहते हैं बच्चे लाइट हो जाते हैं, करना आप स्वयं को टाइट लेकिन हो जाते हैं लाइट, है ना। तो कौन सी थी, गोल। हाँ, नेक्स्ट है संतुष्ट रहेंगे जब हम हेल्दी होंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा था सदा संतुष्ट रहने के लिए तीन बातें बताई थी, स स स संबंध, संपत्ति और सेहत। और एक मुरली संतुष्टता की थी तन मन धन और जन, ये चार चीजें। तो हेल्थ भी हमारी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं है, और ये सबसे बड़ा कड़ा पेपर ही है, जब हेल्थ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो संकल्प तो चलते हैं ना। इसलिए जब भी हम ठीक ठाक है ना तो अपने आप को ठीक रखने का ही प्रयास करना है, ऐसा वैसा कुछ पेट में डाल नहीं देना जो बाद में प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो हेल्थ भी हमारी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, और क्या करो, जिम, वेरी गुड, जिम। अच्छा, जीभ पर कंट्रोल, जिम भी कर सकते हैं, जीभ पर भी कंट्रोल। हाँ, तो ये शरीर की एक्सरसाइज जरूरी करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अमूल्य तन है ये। इस तन से तो हमको पुरुषार्थ करना है, इसी तन से तो हमको कल्प कल्प के लिए जमा करना है, इसी तन से तो इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा हम भगवान का प्यार अनुभव कर रहे हैं। ये कर्मेंद्रियां, ये जो शरीर है, ये तो साक्षात्कार कराने के लिए बाबा के लिए जैसे एक बहुत अच्छा माध्यम दिया है। लोगों को अनुभव कैसे होगा कि भगवान के बच्चे हैं, कहाँ से देखेगा, हमारे फेस से देखेगा कि इनको मिला क्या है, तो पहले फेस ही दिखाई देगा ना, आत्मा थोड़ी देखेगी पहले लोग, पहले तो फेस ही दिखाई देता है। ये तो हम सब बच्चों को पता है कि आत्मा को देखना है, लेकिन फिर भी हम सब बच्चों को पहले क्या दिखाई देता है, फेस ही दिखाई देता है। तो फेस के अगर हमारे 12 बज गए तो फिर कैसे होगा काम। तो हेल्थ भी हमारी कैसी होनी चाहिए, हाँ, प्रकृति अपने आप बताया ना, प्रकृति को दासी बना लो तो उदासी चली जाएगी। तो ये प्रकृति जो दासी बना, अर्थात इसको सहयोगी बनाना है, दासी की तरह इसके साथ हमको व्यवहार नहीं करना है। एक वो तो एक अलग बात है, बाबा के महावाक्य हैं, लेकिन इसके साथ हमको बड़े प्यार से इसको चलाना है। एक घर में अगर कोई कर्मचारी है, उसके साथ हम परिवार जैसा व्यवहार करते हैं तो कितना अच्छा वो रिस्पॉन्स देता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहला काम है। तो जितना हम किसी को प्यार से रखते हैं उतना हमारा वो सहयोगी रहता है। तो एक हेल्थ है, नेक्स्ट है इच्छाओं पर नियंत्रण। जो भी अनावश्यक इच्छाएं हैं जो हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देती हैं, और अनावश्यक इच्छाएं क्या हैं, मृग तृष्णा के समान है, एक जंजीर की तरह है जो बांध देती है मन को, है ना। अगर हम अपने घर में आसपास में देखें, जो भी चीज़ें हमने खरीद के रखी हुई हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं करते, ऐसे पड़ी हुई हैं, उस कोने को खाली कर दो, बांट दो किसी को, खुशी रहेगी। कमरे में जितना कम सामान होगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि कमरे की चीज़ें भी हमारी एनर्जी को खा जाती हैं। इसलिए सन्यासियों के पास क्या होता था, कुछ भी नहीं है, और पूरी दुनिया उनके आकर्षण में आकर्षित हो जाती है। जंगलों में रहते थे अकेले, कोई तो उनके पास था कोई सामान, कोई गैस सिलेंडर भी नहीं, कोई कुछ था ही नहीं, लेकिन खाना पहुंच जाता था वहां, क्योंकि इच्छाएं नहीं है। जितनी ज्यादा इच्छाएं उतनी ज्यादा इम्प्योरिटी, जितनी इच्छाएं कम उतनी प्योरिटी पावरफुल। जन्म लेती रहती है वो इच्छाएं जो है, दुष्पूर है वो, कभी पूर्ण नहीं होती है, 99 के फेर की तरह है। तो इच्छाओं पर कंट्रोल। नेक्स्ट है जो भी हमको जिम्मेवारी मिलती है, अगर हम उसको पूरा मनोयोग से निभाते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है ना। अगर कोई हमको सेवा देता है और हम स्वे पर सेवा कर देते हैं, पूरा जी जान लगाकर उस सेवा को अपना समझ के, बाबा की सेवा समझ के कर देते हैं समय पर, तो कितना अंदर से खुशी मिलती है। तो जो भी हमको सेवा मिलती है उसको अपना समझ के करना है, है ना। जैसे एक बच्चा काम करता था कहीं, तो उसकी मालकिन उसको पूछती नहीं थी कुछ भी, तो बच्चा चाहता था मेरी मालकिन मुझे पूछे कि मैं काम से संतुष्ट है कि नहीं है। तो एक बार वो किसी पीसीयू में जाके फोन करता है आवाज़ बदल के, क्या आपके घर में इतना सारा काम होता है और उस काम करने के लिए मैं आधे पैसे में काम कर दूंगा। जैसे मान लो वो बच्चा पहले 5,000 रुपये लेता था, अभी वो ही बच्चा दूसरी आवाज़ दे के करे मैं 2,500 में काम कर दूंगा और उससे अच्छा काम करूंगा। तो मालकिन कहती है नहीं, जो काम कर रहे ना वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके जैसा अच्छा कोई काम नहीं करता है। तो उस मालकिन ने उसको सर्टिफिकेट दिया, हालांकि उसको पता नहीं कि वही बच्चा बात कर रहा है। तो हम जो भी काम करते हैं पूरा मनोयोग से करते हैं तो अंदर में एक संतुष्टता मिलती है और भगवान ऊपर से फूलों की बरसात करता है। सबसे पहले जो हम अपने मन से दुआएं निकलेंगी, तो जो भी जवाबदार मिलती है उसको हमको समय पर पूरा करके दुआएं अर्जित करनी है। नेक्स्ट है किसी को समय पर सहयोग देना, किसी अननोन पर्सन कोई, जो हमको जान पहचान के उनको सहयोग देना बड़ी बात नहीं है, किसी अननोन पर्सन को सहयोग देना समय पर, तो कितनी खुशी मिलती है वो। और जरूरी नहीं है वो ज्ञान दे के ही मिलती है, किसी को सड़क पार कराने में ही है, या किसी को समय पर भोजन करा दिया, या किसी को कोई बात सुन ली दुख दर्द में बेचारे उसको 2 मिनट टाइम दे दिया। तो ये भी छोटी छोटी बातें होती है हमारे पुरुषार्थ को, या जो रुकावटें होती हैं उसको ख़त्म कर देती है। तो किसी को समय पर सहयोग देना है। नेक्स्ट है नियमों का पालन करना। अगर हम अपने नियमों को कमज़ोर कर देते हैं तो क्या होता है, असंतुष्टता बनी रहती है अंदर में, मन खाता रहता है कि मैं नियमों का पालन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेले से रात तक जो भी संतुष्ट आत्माएं होंगी उनके संतुष्टता की झलक दूसरों को भी संतुष्ट करेगी, आज की मुरली में है ना। तो जो भी हमारे नियम कायदे कानून है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हम उनको पूरा अनुसरण करें। नेक्स्ट है माफ़ करना, किसको माफ़ कर दो, छोटी मोटी कोई गलती करता है माफ़ कर दो, उसकी संतुष्टता कितनी मिलती है। नेक्स्ट है नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से, कोई शिकायत नहीं, नहीं तो शिकायत ही है, ये ऐसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है वो वैसे कर रहा है, हम भूल जाते हैं, नथिंग न्यू है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो कंप्लेंट नहीं करनी है, क्या करना है, सबको कंप्लीट बनाने का संकल्प करना है। नेक्स्ट है सदा ओके, हमेशा बाबा को कहना बाबा आई एम ओके, बार बार दिन में कहना। ये जैसे सबसे पहले बताया था कि बाबा हम आपको पाकर संतुष्ट हुए, एक तो रोज ये रिपीट करना, दूसरा बाबा आई एम ओके, मैं बिल्कुल ओके हूँ, ओके हूँ। जैसे कोई बात हमको कहता है तो क्या कहते हैं, हाँ ओके ओके ओके, मानो उसको संतुष्टता संतावना दे देते हैं ना। तो ऐसे हम बार बार अपने आप को ओके करेंगे, बाबा आई एम ओके ओके ओके, तो वो संस्कार हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, पवित्रता ही संतुष्टता का आधार है, जितना हमारे पवित्रता बढ़ती जाएगी संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है कोई प्रश्न नहीं, क्वेश्चन खत्म, बाबा क्या कहते हैं फुल स्टॉप लगा देना। नेक्स्ट है रिलेशन, सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं, संबंध सेहत और संपत्ति बताया ना, तो सारे संबंध एक बाप से। नेक्स्ट है हमेशा अपनी सीट पर सेट रहना, असंतुष्टता कब होती है, जब हम सीट से उतर जाते हैं, ऑफिसर कब तक, जब तक कुर्सी पर रहता है तो सब उसमें सारे अधिकार रहते हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको सारे वर्षे फुल अधिकार दे दिए हैं, वर्षे में सारी प्राप्तियां दे दी हैं, उसको यूज करो। तो हमेशा हम अपनी सीट पर सेट अपने आप को सेट करके अधिकारों का प्रयोग करें। कितने हो गए इनके, 19 हो गए, 16 हो गए, 16 और 19 35 हो गए, हाँ। तो सीट पर नेक्स्ट है अपने आप को ट्रस्टी समझना है, अपना कुछ भी नहीं है ये देह भी तो अपना नहीं है ना, ये देह अगर अपना होता है तो कभी दांत खराब हो रहे हैं ये सहयोग कहाँ दे रहे हैं, कभी आंख खराब हो जाती है, कभी कान नहीं सुन रहे हैं, ये अपना तन भी तो नहीं है, भगवान का दिया हुआ तन है। तो ये ट्रस्टी हैं हम, इसके भी देह के भी ट्रस्टी हैं और जो भी हमको भगवान के द्वारा मिला सब ट्रस्टी हैं। नेक्स्ट है सदा ऊपर वाले का हाथ पकड़ के रहना, 21 हो गई ना, तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ेंगे तो संतुष्ट नहीं रहेंगे, रहेंगे ना। तो ये 21 बातें थी, तो ऐसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो बाबा का जो ज्ञान है इसका चिंतन करने की आदत डालनी है, मुरली के साथ लिंक करके, कोई भी मुरली के साथ उसको जोड़ के मन बुद्धि को बिजी रखना है। तो हम सदा क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे, सब प्रश्न से पार रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, ना मान हद का जो ना मान शान है उससे परे रहेंगे, बेहद के ना मान शान में सीट पर सेट रहेंगे, और बावन का धारणों में क्या बनना है, ने आज की मुरली में था अलर्ट, धारणों में अलर्ट रहेंगे और सदा सेफ रहेंगे, सदा समृद्धि रूप स्वरूप रहेंगे, सदा समर्थ रहेंगे, सदा निर्माणचित रहेंगे। ओम शांति।